Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. پچھلی کلاس میں کیا بات کر رہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ جی ریحان بھائی، کہ فضائل اور صحیح فنا کر دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا تھا، تو اس سے ان کو پھر کیا مقام حاصل ہوا تھا؟ ان کی ہمت بڑھ گئی تھی. جی، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت اتحادی نصیب ہو گئی تھی. نسبت اتحادی جو ہوتا ہے نا، نسبت کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ تعلق، کنیکشن، ٹھیک ہے. تو یہ کنیکشن جو ہوتے ہیں، پھر یہ اس کے ڈفرنٹ لیولز ہوتے ہیں. کسی کو کسی کے ساتھ ذرا ہلکا پھلکا سا کنیکشن، جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی دوستی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ آپ کو زیادہ دوستی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اور زیادہ دوستی ہوتی ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایسی دوستی ہوتی ہے کہ بس ہر وقت ہی ساتھ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہے نا. اور حتیٰ کہ اتنی دوستی ہو جاتی ہے کہ آپ کی اور ان کی جو ہے نا وہ سوچ بھی ایک جیسی ہو جاتی ہے، آپ کی جو ہے وہ لائکس اینڈ ڈس لائکس ایک جیسی ہو جاتی ہیں، پریفرنسز جو ہے وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہلاتی ہے جی، یہ سب سے زیادہ گہری اور سٹرونگ دوستی ہے. تو دوستی تو بھائی آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی ہے، یہاں پہ بھی سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو دوستی ہوگی، لیکن وہ بھی تو دوستی ہی ہے نا. لیکن ان کی اسٹرینتھس کے اندر جو ہے نا، وہ ان کے اندر ڈفرنس ہے نا، ٹھیک ہے. تو سارے صحابہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نسبت حاصل تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ نسبت حاصل تھی. اور وہ کیسے حاصل ہوئی؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے سامنے بالکل فنا کر دیا، ٹھیک ہے. اور یہ تھے بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ عقل والے، اتنی زیادہ صلاحیت والے، اتنی زیادہ بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی مال و دولت والے بھی تھے. یہ جو تھے نا، یہ انڈسٹریلسٹ تھے، ان کی فیکٹریز چلتی تھیں اس زمانے میں، ٹھیک ہے. تو ان کے پاس خوب سارا جو ہے، اچھا عقل، سمجھ، علم، سب کچھ بہت زیادہ تھا. تو اس وجہ سے نا انہوں نے وہ سارا کا سارا قربان کیا، تو ان کو جو ہے پھر نسبت اتحادی بھی ملی. اور نسبت اتحادی ملنے کے نتیجے میں ان کو بھی تقریباً ویسی ہی ہمت اور حوصلہ مل گیا جیسا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور حوصلہ دیا تھا، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قربان کر دیا تھا بالکل، یعنی بندگی کی انتہا پہ نبی علیہ السلام پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ ہمت عطا فرما دی، کیونکہ انہوں نے بندگی میں جو ہے وہ انتہا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کرنے میں ان کو انتہا کر دی. اچھا، تو اس کو ہمت کہتے ہیں. اگر اپنے نفس کو قربان کیے بغیر کوئی انسان ہمت دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کو قربان کیے بغیر، آپ سائنس کلاس والوں سے تو ہم یہ نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ تو بہت تفصیل سے باتیں ہو چکی ہیں، تو دوسرے لوگ بتائیں. ہمت اگر کوئی اپنے نفس کو قربان کیے بغیر بہت زیادہ ہمت دکھاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی، اس کو ضد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ضدی تو وہ ایک کمپنی کا نام ہے نا، یہاں پہ ایک برانڈ ہے ادھر، ضدی، پتہ نہیں اس نے کیوں اپنا نام ضدی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ ضدی انسان کون تھا؟ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ ہمت والے تھے، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امتیوں میں سب سے زیادہ ہمت والے تھے، لیکن سب سے زیادہ ضدی انسان کون تھا؟ देखो हिम्मत यानी नेगेटिव हिम्मत वाला, ऑनलाइन भी पूछ लेना चाहिए, ठीक है? आप भी साइंस क्लास वाले हैं तो हम आपसे नहीं पूछते जी, नॉन साइंस क्लास।
मुझे
अबू जहल था, ठीक है ना? अबू जहल जो है वो नेगेटिव हिम्मत यानी बातिल हिम्मत, बुरी हिम्मत की एक्सट्रीम के ऊपर था, इंतहा के ऊपर था, ठीक है? इतना ज्यादा जिद्दी था कि नबी अलैहिस्सलाम उसके पास दीन की दावत देने के लिए 3,000 मरतबा गए, उसके पास पर्सनली उसके पास गए, लेकिन उसने नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, ठीक है ना? इतना ज्यादा जिद्दी था। और इसकी एक्सट्रीम कब हुई कि जब ये कत्ल किया जाने वाला था बदर के अंदर, और कत्ल भी कौन कर रहे थे उसको, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन कर रहे थे, जो कि सबसे कमजोर सहाबी थे, है ना? उतने पतले दुबले के उनकी जो ये जो साख कहलाती है ना, पिंडली, इतनी पतली थी कि लोग देख करके उसको हंसना शुरू हो जाते, ये इतनी पतली है, पिंडियां कैसी होती हैं, ठीक है? इतने कमजोर थे। अल्लाह ताला ने इसको जो है ना वो सबसे ज्यादा कमजोर सहाबी से जो है वो कत्ल करवाया। तो उस वक्त भी कहने लगा कि मेरी गर्दन को ना नीचे से काटना, ऐसे काटना ताकि जब मेरा सर रखा जाए ना दूसरे लोगों के सरों के साथ, तो मेरा सर जो है ना वो सबसे ऊंचा नजर आए, ठीक है? अगर यहां से काटेंगे ना तो वो सर जो है वो जमीन के साथ चिपका हुआ नजर आएगा, ठीक है? बेशक इतना बड़ा सर होगा लेकिन फिर भी जमीन के साथ, ठीक है? आपको शायद हमने सीरत क्लास में जब गज़वे बदर की बात हो रही थी उस वक्त ये बताया था, एक दफा हम कराची में ना अपने एक रिश्तेदार के पास गए, इनके नाना लगते हैं वो, तो वो जो है ना वो बकरीद में कुर्बानियां करवाते थे, इज्तिमाई कुर्बानियां, पूरे मोहल्ले के लोग जो है ना उनके पास आकर के नाम दे देते दे थे, और वो गायें वगैरह खरीद के लाते थे और फिर वो उनकी इज्तिमाई कुर्बानी होती थी। तो गायों को काट काट के ना गायों के सर जो है वो, फिर जब उनके घर में हम दाखिल हुए, देखा एक साइड पे लाइन से जो है ना वो गायें गायों के सर रखे हुए, राइट? ऐसा लग रहा था जैसे ट्रॉफीज रखी हुई है। तो वो याद आ गया कि उस जमाने में लोग जो है ना अपने दुश्मनों को जब मारते थे तो उनके सर भी इस तरीके से रखते थे, ठीक है? तो खैर मुसलमानों ने तो ऐसा काम करना नहीं था, लेकिन अबू जहल समझ रहा था कि जैसे मुसलमानों ने भी ऐसे ही करना है बाद में, तो उसने कहा जी मेरे सर जो है ना वो गर्दन नीचे से काटना, इतना जिद्दी था, ठीक है? फिरौन से भी ज्यादा जिद्दी था, क्योंकि फिरौन की जब मौत आ रही थी तो उसने कहा था आमन तो बिरब्बी मूसा व हारून, मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब के ऊपर, लेकिन इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। वो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देख चुका था ना, अब जब देख चुके हो ना फरिश्ते को, मौत आ चुकी हो, देख चुके हो, अब तौबा कबूलनी होती, लेकिन फिर भी उसने तौबा करने की कोशिश जरूर करी थी, इसने वो भी नहीं करी जी।
एक रवायत में आया था कि अबू जहल का सर जो इतना बड़ा और भारी था कि अब्दुल्लाह बिन मसूद इतना उनसे उठाया नहीं गया, तो बस सीटी
सीट के देख
लेके
गया,
गए थे।
यानी उसका सर तो इतना बड़ा और भारी तो था, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद अदन कितने बेचारे फिजिकली कितने कमजोर थे, ठीक है? कि वो उसका सर भी नहीं उठा सके, हालांकि जमाने के लोग जो हैं वो इतने तो मजबूत होते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक तो अबू जहल को खत्म करने का काम उनसे लिया, और फिर दीन के उलूम के अंदर जो है ना अब्दुल्ला इब्ने मसूद अदन, फिका के अंदर सबसे ऊंचा मुकाम जो है वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद अदन का है, ठीक है? उन्हीं की फिका को फिर हम लोग हनफी फिका के नाम से अब याद करते हैं। अच्छा, तो ये जो अबू जहल था इसके बारे में हमने आपको एक आयत भी बताई थी कि इसको अल्लाह ताला ने जब डिस्क्राइब किया है ना अपने कुरान के अंदर, तो कैसे डिस्क्राइब किया है कि हम इसको पकड़ेंगे इसके फोरहेड से, यानी इसके नफ्स को हम काबू कर लेंगे, लेकिन और इसका जो फोरहेड है ना, जो उसका जो नफ्स है, इसके बारे में फरमाया कि ये जो नफ्स है ना इसका, नासियतिन काजिबतिन खातिया, ठीक है? ये झूठा झूठा इंसान है, ये इसका नफ्स जो है ना ये झूठा है, यानी होता कुछ है कहता कुछ और है, होता कुछ है कहता कुछ और है। और ये सबसे बड़ा दुश्मन किसका था, किसका था सबसे बड़ा दुश्मन? ये नबी अलैहिस्सलाम का, और नबी अलैहिस्सलाम को की क्या सिफत थी? सादिक, सच्चे, ठीक है? तो ये काजिब और वो सादिक, ठीक है? इसी वजह से ये जो झूठ है ना, ये झूठ बहुत बुरी बीमारी है, और झूठ के साथ फिर ऐसा होता है कि इंसान फिर नेक नहीं रह सकता उसके बाद, बल्कि उसके लिए गुनाहों का दरवाजा खुल जाता है, इट ओपन्स द डोर टू सिन, ठीक है ना? इस वजह से हम अगर किसी और गलती से नहीं भी बच पा रहे हैं ना, तो हम कम से कम झूठ से जरूर बचें, झूठ से जरूर बचें। झूठा शख्स जो होता है ना, इसका इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इसका इलाज, ये आप बताएं? झूठे शख्स का इलाज क्यों नहीं हो सकता? यानी एक बीमारी है ना, गुनाह करना और गंदे गंदे काम करना, बुरे काम करना, ये बीमारी है। तो इसका इलाज ये है कि भाई इंसान ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। तो इस वजह से जिस तरह हमें कोई फिजिकल इलनेस होती है तो उसका इलाज किया जाता है, उसी तरह से रूहानी बीमारियां होती हैं उसका भी इलाज किया जाता है। तो फिर हम ठीक हो जाते हैं, जब इलाज करवा देते हैं ठीक हो जाते हैं। लेकिन झूठे शख्स का इलाज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, कह जाए आपसे, आप दोनों के अलावा कोई और, झूठे शख्स का क्यों नहीं इलाज हो सकता इसकी बीमारी का? माशाल्लाह। क्योंकि वो अपनी बीमारी के बारे में कभी सच्ची बात नहीं बताता। ठीक है ना, बिल्कुल सही, आप लोग भी आई एम श्योर ये जवाब दे रहे होंगे, है ना? क्योंकि ये झूठा शख्स जो होता है ना, जिसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है ना, अब ये हर जगह झूठ बोलता है। हत्ता के जब ये डॉक्टर के पास जाता है ना इलाज करवाने के लिए, तो ये डॉक्टर से भी झूठ बोलना शुरू कर देता है। अब जब डॉक्टर से झूठ बोलेगा तो फिर डॉक्टर को क्या पता चलेगा कि इसकी बीमारी है क्या? डॉक्टर खुदा तो नहीं है, राइट? डॉक्टर आलमुल गैब तो नहीं है कि असल में इसका मसला क्या है, असल में जो है वो यानी इसका कैसे इलाज करें। तो ये तो भाई अपनी अपनी सिम्टम्स बताएगा, तब डॉक्टर जो है ना समझेगा कि अच्छा इसके अंदर ये वाली बीमारी है, इसको मुझे ये वाली दवा देनी चाहिए, इसको मुझे ये वाला परहेज बताना चाहिए, इसको मुझे ऐसे इलाज करना चाहिए। ये डॉक्टर के पास भी जाकर के झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? तो अब इसका इलाज जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए झूठ झूठ एक ऐसी चीज है कि दिस इज बेसिकली किल्स एवरीथिंग, इट किल्स एवरीथिंग, ठीक है? तो झूठ से जो है ना बहुत बचने की कोशिश करनी है। अगर खुद नहीं बच पा रहे तो अल्लाह ताला से कहना है कि अल्लाह आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, झूठ नहीं बोलना है हमने, ठीक है? अच्छा, तो इसके इसके ऑपोजिट में सादिक है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उनको सिद्दीक क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने सादिक को अफर्म किया, नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक करी कि नबी अलैहिस्सलाम जो भी कहते हैं सच कहते हैं, ठीक है ना? बेशक हमें समझ में आता है या हमें समझ में नहीं आता, नबी अलैहिस्सलाम के बाद झूठी नहीं हो सकती। इसको कहते हैं तस्दीक करना, सच्चे को कंफर्म करना। तो अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ताला ने फिर ये वाला लकब दिलवाया कि ये सादिक खाली नहीं है, ये सिद्दीक है, ठीक है? अच्छा, अब जो है वो जो हम बातें कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रतान के बारे में निस्बत इत्तेहादी की, तो उसमें फिर हमने आपके सामने कुछ चीजें रखी थी, वो हम कहाँ पहुंचे थे उसमें, किसी को याद है हम कहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ इन्होंने लिखा कि क्योंकि वो अपनी बीमारी के बारे में झूठ बोलता है, बिल्कुल सही, कहाँ तक पहुंचे थे ये नहीं याद? एक हफ्ता तो गुजरा, मुझे ठंडक लग रही है जी।
हिजरत की सफर का वाक्य था।
हाँ, हम हिजरत के वाकये तक पहुंचे थे, ठीक है? हिजरत का वाला शेर याद है, हमारे मुआविया भाई भी तक पहुंचे नहीं है, वरना मुआविया भाई से उसका ताल्लुक है जी।
आपका तेरी महाराज महाराज की तू लोहे कलम पर पहुंचा और मेरी महाराज की मैं तेरे कलम पर पहुंचा।
जी, हमने जब हिजरत का सफर आप लोगों को पढ़ा रहे थे ना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास के अंदर, तो उसके उसी दौरान जो है वो हजरत जी तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा में, तो हम मिलने के लिए गए थे वहां पर। तो वहां पे ना मैंने हजरत जी को बताया कि हजरत आजकल जो है ना सीरत क्लास चल रही है, उसके अंदर जो है वो मेराज का सफर चल रहा है, और हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं, और उसमें हमने बच्चों को ये बताया कि ये जो मेराज थी ना, ये यानी नबी अलैहिस्सलाम की मेराज तो वो थी जो आसमानों तक पहुंचे, और जो हिजरत का सफर था ये ऐसा लगता था कि ये अबू बकर सिद्दीक रहता उनकी मेराज है, ठीक है? तो हमने फिर हजरत जी को कहा कि हजरत जी आप जो ये शेर पढ़ा करते हैं ना अपने बयान के अंदर, तो हमने बच्चों को भी ये वाला शेर बताया, ठीक है? तो हजरत जी ने सुनकर के हजरत जी खामोश हो जाते हैं, दादा आगे से बहुत बोलते नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो है ना वो जब हम लोग वहां से निकल गए, तो ये हमारे जो मौलविया भाई आजकल आए हुए हैं, तो इन्होंने हजरत जी से फरमाया कि हजरत जी आपको मुझे ऑटोग्राफ दे दें ना। वो ऑटोग्राफ लेने का उम्र भी कम है तो ये लेते हैं ऑटोग्राफ लोग, ठीक है? तो हजी ने जो है ना मुझे बाद में आके बताने लगे कि हजी ने वही वाला शेर ऑटोग्राफ के अंदर लिखा जो कि आपने हजी को अभी बताया, ठीक है? तो हजी को वो याद रहा था, यानी हजी रियली टुक दैट वेरी सीरियसली, ठीक है? तो मेराज के सफर के अंदर अबू बकर सिद्दीक रतान का मामला क्या था कि हर चीज अबू बकर सिद्दीक रतान ही कर रहे थे, पूरी अपनी फैमिली को नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबू बकर सिद्दीक रतान उन्होंने लगा दिया था, ठीक है? तो इस वजह से अबू बकर सिद्दीक रतान को फिर क्या मुकाम मिला था? जी ये कोई बताएगा मेराज के सफर में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन को एक एक रिवॉर्ड मिला, एक एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला। ठीक है, एक अवार्ड मिला था जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज पर गए थे। ठीक है, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन को क्या अवार्ड मिला था? सिद्दीक का लकब। ये अवार्ड उनको कब मिला था? जब नबी अलैहिस्सलाम की उन्होंने वेरिफिकेशन करी थी कि हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। ठीक है ना, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था तो हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। उस वक्त उनको कौन सा तमगा मिला, कौन सा मेडल मिला? सिद्दीक का मेडल मिला। ठीक है, हिजरत के सफर में उनको कौन सा वाला मेडल मिला ये बताएं। ये जरा मुश्किल सवाल है, बड़े भी जवाब दे सकते, ऑनलाइन भी। हाँ, इन्होंने वैसे जवाब तो दिया है लेकिन ये जवाब तो हमारे लैंग्वेज का जवाब है, तो हमारे लैंग्वेज का जवाब जी।
दो में से दूसरे
सही है, तो हमारी लैंग्वेज के अंदर तो ये जवाब है गारे यार, यारे गार, गारे यार नहीं सॉरी, यारे गार। ठीक है, गार का यार यानी नबी अलैहिस्सलाम जब वो गारे सौर के अंदर छुपे थे ना जा करके अबू बकर सिद्दीक के साथ, तो उस गार के अंदर जो 3 रातें नबी अलैहिस्सलाम ने गुजारी हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई और नहीं था, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक थे। ठीक है ना, जब दाखिल हुए हैं गार के अंदर तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया उन्होंने कि आप बाहर वेट करें, मैं अंदर जाकर के देख लूं कहीं कोई कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू वगैरह तो नहीं है। तो वहां पे इन्होंने सफाई वगैरह करी अपने कपड़े से, और फिर जो है ना वहां पे बिल्स थे, होल्स थे जिनके अंदर कीड़े रहते हैं, सांप वगैरह रहते हैं। इन्होंने अपनी चादर को फाड़ना शुरू किया और चादर के टुकड़े से उन होल्स को बंद करना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया, हत्ता कि पूरी चादर ही उनकी खत्म हो गई। अब चादर बाकी नहीं रही लेकिन एक होल बाकी रह गया। ठीक है, अब उस होल से जो है वो सांप निकल के काट सकता था, तो उन्होंने पे क्या किया, आप क्या कह रहे थे? ओढ़ने वाली जो चादर होती है, ठीक है, रदार। जी हाँ, अबू बकर सिद्दीक बताना, उन्होंने क्या किया कि अबू बकर सिद्दीक बताना जो है ना वहीं पे बैठ गए और नबी सर अब आप तशरीफ ले आइए। ठीक है ना, तो वो जो बैठे थे ना तो उन्होंने अपना जो पाओ का थम जो था ना उसको, अंगूठा जो था उसको उस होल के ऊपर रख दिया ताकि वो होल बंद हो जाए। ठीक है ना, और नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया आप आराम फरमा लीजिए, तो आपसे समझ ना इनके गोद में सर रख करके सो गए। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना वो इनको बहुत परेशानी थी कि कहीं दुश्मन ना आ जाए, क्योंकि फिर दुश्मन जो है वो आना भी शुरू हो गया था ना, लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी, हत्ता के लोगों के कदम भी नजर आने शुरू हो गए थे। तो ये बहुत परेशान हो गया कि अब जो है ना वो दुश्मन अंदर आ जाएगा और नबी अलैहिस्सलाम को जो है ना वो तकलीफ पहुंचाएंगे, इनको ले जाएंगे और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता था। ठीक है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी इस परेशानी को भांप लिया और फरमाया ला तहजन, आप गम ना करें, गम ना करो, कुछ नहीं होने वाला है, गम ना करो, इन अल्लाह मा नी नहीं फरमाया, अल्लाह ताला मेरे साथ है तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला मेरे साथ है और तुम मेरे साहबी हो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, अल्लाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन अल्लाह मा ना, अल्लाह ताला हम दोनों के साथ है। ठीक है, अल्लाह ताला हम दोनों के साथ है, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के इस कौल को नकल फरमाया कुरान मजीद के अंदर। ठीक है ना, और साथ साथ ये भी फरमाया सानियस नहीं नहीं इज हो माफिल गार, दो में से दूसरा जब वो दोनों गार के अंदर थे। ठीक है, तो अब ये जो तमगा ना ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम को मिला सानियस नहीं का, और दूसरा तमगा अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से इनको दिलवाया और फिर उसको अपने कुरान में भी नकल फरमा दिया। ठीक है, तो अब ये जो थी ना इसको कहते हैं अल्लाह ताला के साथ मईयत, अल्लाह ताला की कंपेनियनशिप, माना मा का मतलब होता है साथ होना। ठीक है, देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था कि सामने समंदर है पीछे फिरौन की फौज है, तो उनके साथ जो लोग थे ना बनी इसराइल के, उन्होंने भी कहा था मूसा हम तो मारे गए, तुमने तो हमें मरवा दिया, ऐसे कहते हैं ना, तुमने तो हमें मरवा दिया, अब हम ना आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं, फिरौन की फौज आ रही है, या तो वो हमें मार देगी या समंदर के अंदर डूब के हम मर जाएंगे। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था कि किसी को याद है, इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो अनकरीब मुझे रास्ता दिखाएगा कि आप करना क्या है, ही विल शो मी द वे व्हाट टू डू इन दिस। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्ना माया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, ये नहीं फरमाया मेरा रब हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ है, बनी इसराइल के साथ भी है, मेरे साथ भी है, ठीक है ना, ये नहीं फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर क्या हुआ कि मेरा रब यानी हमारे हमारे साथ है, हम दोनों के साथ है। ठीक है, तो ये जो थी ना मईयत, जो कि नबियों के साथ होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नबियों के साथ जो स्पेशल ताल्लुक होता है, ठीक है ना, तो ये स्पेशल ताल्लुक जो है वो इस कॉल से पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के साथ भी ऐसा ही ताल्लुक, ठीक है ना, ऐसा ही क्लोज रिलेशनशिप अल्लाह ताला का जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ था। ठीक है, तो ये एक ऐसा तमगा था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के लिए कि जो कि इस मौके पर उनको मिला, ये मेडल था इस सफर के अंदर जो है ना वो आप के साथ रहने का, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बल्कि ये सबसे बड़ी चीज है कि अल्लाह ताला की ऐसी माइयत मिल जाए। इसी वजह से ना अब ये जो माइयत अल्लाह ताला के साथ उनको मिली, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप बच्चे भी कोशिश करें तो वो समझ में आ जाएगा। सही है कि एक चीज होती है किसी कोई बात, आप व्हेन यू से समथिंग इन वर्ड्स, लफ्जों में कोई बात कहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि जी ये जो मामला हुआ है ना ये लफ्जी मामला, जैसे मैंने कहा कि ये रेहान भाई मेरे दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन डू आई रियली स्टैंड बाय इट, डू आई रियली मीन इट, क्या दिल से भी जो है वो ऐसा है कि रेहान भाई वाकई मेरे दिया, मैंने उनको खुश करने के लिए कह दिया, ठीक है ना, तो लफ्जन तो मैंने उनको अपना दोस्त कह दिया, क्या मानन भी ये मेरे दोस्त हैं, मानन का मतलब होता है कि डू आई मीन, अगर अंग्रेजी में भी ये लफ्ज समझ, डू आई मीन इट, अरबी में ये कहते हैं मानन, ठीक है, तो दो चीजें होती हैं किसी बात को करने की, एक लफ्जन एक मानन, ठीक है, जैसे कुरान की हिफाजत माशाल्लाह आप में से अक्सर ने जो है वो लफ्जन पूरी कर ली है, कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, हाफिज कुरान, तो आप लोगों ने कुरान मजीद की लफ्जन हिफाजत करी है, क्या आप लोगों ने कुरान मजीद की मानन भी हिफाजत करी है, एक आद के अलावा मैं किसी को नहीं कह सकता कि वो मानन भी हिफाजत कर रहे, ठीक है ना, जैसे अब्दुल्ला भाई ये आलिम कोर्स की किताबें भी पढ़ रहे हैं, अहमद भाई भी पढ़ रहे हैं, शायद अमाद भाई ने भी थोड़ी पढ़ी है, तो ये लोग फिर मानन भी कुरान मजीद की हिफाजत कर रहे हैं, खाली लफ्जन नहीं, ठीक है, तो ये फर्क होता है मानन और लफ्जन में। तो नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की जो मईयत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मिली ना, ये दोनों तरीके से मिली, लफ्जन भी और मानन भी। तो लफ्जन कैसे मिली ये आप अगर बताने की कोशिश करें, ये मईयत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को लफ्जन भी मिली, कैसे, किसी को पता है नबी अलैहिस्सलाम को कैसे कहते हैं, हम कैसे पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ठीक है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो टाइटल था वो क्या था, या खलीफता रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह के खलीफा, ठीक है, जबकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह अन्हु इनको खलीफता रसूल अल्लाह नहीं कहते थे, इनको क्या कहते थे, या अमीर अल मोमिनीन, है ना, मोमिनीन के अमीर, इनको खलीफा तो रसूल अल्लाह नहीं कहते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। तो ये लफ्जन माइयत है, और मानन माइयत क्या है कि अल्लाह ताला की जो मदद नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी ना, वैसे ही मदद अल्लाह ताला की अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी थी, ठीक है, इसको कहते हैं मानन माइयत, अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, इसके बहुत सारे वाकयात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब इतना मुश्किल वक्त आया मुसलमानों के ऊपर तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी हिम्मत दिखाई जैसी हिम्मत जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम दिखाते थे, ठीक है, वो कैसे दिखा दी, अपने तौर पर तो नहीं दिखा दी ना, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी, ठीक है ना, जैसे कल हम जो कुरान मजीद की आयत पढ़ रहे थे, लौला अन सबवतना का, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम आपको साबित कदम ना रखते, ठीक है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने साबित कदम रखा, यानी इतनी हिम्मत अता फरमाई, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अल्लाह ने साबित कदम रखा और इतनी हिम्मत अता फरमाई। तो ये होती है मानन माइयत, ठीक है। बहरहाल आपको बताना भी जरूरी था, वरना जानता हूं कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। अच्छा हिजरत के सफर में नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मईयत थी, और कोई वाकया किसी को याद है इसमें से? ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो निस्बत इत्तेहादी थी ना आपस में, ठीक है ना, इसका एक और वाकया हिजरत से ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम बहुत पाकीज़ा रहते थे, बहुत साफ सुथरे थे, ठीक है। वो आप जो है ना, वो गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ठीक है, ट्रैश को, जैसे हम लोग अक्सर कर देते हैं ना कि जहाँ पे हम कुछ खाते पीते हैं तो हम उधर ही ट्रैश छोड़ देते हैं, हम उधर ही जो है ना वो यूं करके जो रैपर होता है उसको उछाल देते हैं, और सफाई सुथराई नहीं पसंद करते, गंदा ग्लास होता है उसी गंदे ग्लास के अंदर पानी डाल करके हम पी लेते हैं, खाने के ऊपर मक्खी बैठ रही है, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल फिक्र नहीं करते, वही मक्खी वाला खाना जो है वो खा लेते हैं, ठीक है। गर्द मिट्टी लगी हुई है जमीन पे, जैसे बच्चे जमीन के ऊपर वो टॉफी गिर जाए ना, वहीं जमीन से उठा कर उसको खा लेते हैं, ठीक है ना, उसको साफ नहीं करते, धोते नहीं है उसको, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कि परवाही नहीं होती इन सब चीज़ों की। नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा परवाह होती थी, और वो क्यों होती थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म भी फरमाया था, और अल्लाह ताला जब हुक्म फरमा दें तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो 100% उसको फॉलो करना है। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म फरमाया था, वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को आप पाक रखें, जरा सा भी उसके अंदर जो है ना वो नापाकी और खराबी नहीं आनी चाहिए, गंदगी नहीं आनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर अमल करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की भी यही कैफियत थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नफासत पसंद थे, बहुत सफाई सुथराई। तो हिजरत के सफर के अंदर क्या वाकया पेश आया था कि जब नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में एक जगह रुके थे, उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के ऊपर, ठीक है, अबू माबद और उम्मे माबद इनका घर जो है ना वो रास्ते में पड़ा था, तो ये दोनों वहां पे रुके और भूख लगी हुई थी, तो उम्मे माबद ही घर पे थी, अबू माबद उस वक्त गए हुए थे, तो इन्होंने इनसे कहा कि भाई कुछ खाने को है आपके पास तो हमें आप दे दीजिए, हम मुसाफिर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये एक जो है ना वो मरियल सी बकरी है, तो इस बकरी का और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसी मरियल सी बकरी के जिसके अंदर जो है ना वो कुछ भी नहीं था, दूध वगैरह कुछ भी नहीं था उसके अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ फेरा ना उसके ऊपर, तो उसके जो थन जहां से दूध निकालते हैं वो भर गए दूध से, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका ना दूध धो करके फिर मैं आपको पिलाता हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ, बल्कि एक धोने वाला बंदा था, दूध निकालने वाला बंदा था, उसको गवाला भी कहते हैं हम लोग, तो उससे कहा कि तुम पहले बकरी का जो थन है ना जहां से तुमने दूध निकालना है इनको धो, और तुम फिर अपना हाथ भी धो, फिर उसके बाद जो है वो दूध निकालो, हाथ भी धो, इस बकरी के थन को भी धो, फिर उसके बाद उसे दूध निकालो। और जब उसने दूध निकाल करके बर्तन में दिया ना, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बर्तन को जो है वो ढक दिया, ढक के लेकर के आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है। क्यों ढक करके लेकर के आए, कि कहीं कोई गर्द, कोई मिट्टी, कोई कीड़ा, कोई मक्खी, कोई मच्छर उसके अंदर ना पड़ जाए। ये क्या बताता है कि अबू बकर सिद्दीक बहुत ज्यादा सफाई पसंद थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम भी सफाई पसंद थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी सफाई पसंद थे। और फिर एक और वाकया, हिजरत के तो वाकयात अब मुकम्मल हो गए। अच्छा अब जो है ना एक दो बातें हमने आपको बतानी है, नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान जो नस्बत इत्तेहादी थी, ये उनके सिर्फ अमल में नहीं थी बल्कि उनकी सोच भी एक जैसी थी। ठीक है, वो किसी चीज के बारे में जब सोचते थे, कोई नतीजा अखज करते थे, कोई जजमेंट बनाते थे, तो जिस जजमेंट पे नबी अलैहिस्सलाम पहुंचते थे ना, अबू बकर सिद्दीक कतान बगैर जाने हुए कि नबी अलैहिस्सलाम किस जजमेंट पे पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक कतान भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचते थे, उसी जजमेंट पे पहुंचते थे। ठीक है ना, इसका एक बड़ा वाकया जो है वो जंगे बदर में जब कुफार के कैदी पकड़े गए ना, 70 के करीब उनके जो है वो मारे गए थे सरदार, और 70 के करीब जो है वो उनके कैदी बनाए गए थे, प्रिजनर्स बनाए गए थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो अब जो है वो पहली दफा काफिरों के साथ लड़ाई हुई थी, कभी इससे पहले लड़ाई ही नहीं हुई। ठीक है, तो अब जो है ना ये क्वेश्चन आया लोगों के जहन में कि भाई अब इन कैदियों का हम करें क्या ना। ठीक है, तो मशवरा हुआ आपस में, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने हिसाब से मशवरा दिया। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें कि जो कैदी जिसका रिश्तेदार है ना मुसलमानों में से, उस कैदी को उसके हवाले करें और इससे कहें कि अपने रिश्तेदार को उसकी गर्दन उड़ाए। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे रिश्तेदार ही थे ना, मक्का मुकरमा के रहने वाले लोग थे ना, जो कि लड़ने के लिए मदीना तैयबा यहाँ पे इन लोगों के साथ आए थे और बदर में लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो हर कैदी को उसके रिश्तेदार के हवाले किया जाए और वो उसको कतल करे। यानी आप सोचें, एक तो कत्ल कर देना ये भी कोई मामूली बात नहीं होती, बड़ी सख्त बात होती है। दूसरा ये कि अपने फैमिली मेंबर को कत्ल करो। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक तआला से मशवरा लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दें, इन लोगों को माफ कर दें। ठीक है, नबी ने फरमाया कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि इनको माफ कर दें, इनको माफ कर दिया जाए। ठीक है, तो इन लोगों ने फैसला तो ये कर लिया माफ करने का, और फिर उनको माफ कर भी दिया, और फिर यानी माफ करने में तो कि कत्ल नहीं करना। ठीक है ना, अब छुड़वाने के लिए फिर अलग शर्तें थी कि हाँ भी कोई लाए, कोई इनका रिश्तेदार आए मक्का मुकरमा से, वो जो है ना वो उसके बदले में कोई चीज दे, तो फिर उसके बदले में फिर अपनी कैदी को लेकर के चले जाए। ठीक है, तो ये था दूसरा तरीका, ये था कि जिसका कोई रिश्तेदार आकर के कोई पैसे वगैरह नहीं दे पा रहा है, तो वो जो है ना अगर पढ़ा लिखा है तो फिर वो अपने या हमारे के 10 बच्चों को पढ़ा दे, पढ़ना लिखना सिखा दे, तो फिर भी हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, इस तरह से इवेंचुअली जो है वो सारे कैदियों को जो है वो छोड़ दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना वो पसंद इस बात को किया था, ये जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले लोग हैं ना, ये नहीं रहने चाहिए दुनिया दुनिया में, नहीं रहने चाहिए, इनको कत्ल कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी ये फरमाई कि अपने इस चाहत को, अल्लाह ताला कुछ चीजें चाहते हैं लेकिन उनको इन्फोर्स नहीं करते। ठीक है, तो चाहत तो ये थी कि सारे कत्ल कर दिए जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक का जो फैसला था इनको माफ करने का, तो इस फैसले के ऊपर अल्लाह ताला ने एग्री कर लिया और कोई सजा नहीं दी। बाकायदा कुरान मजीद के अंदर फरमा भी दिया कि हम तो तुम्हें सजा देने वाले थे, ये जो तुमने इन मुशरिकों को छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया। ठीक है ना, तो अगर हमने पहले से फैसला ना किया होता ना सजा ना देने का, तो फिर तो हम तुम्हें सजा दे देते। ठीक है ना, तो जब नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई ना, तो अबू बकर सिद्दीक और नबी अलैहिस्सलाम दोनों रोना शुरू हो गए। ठीक है, दोनों रोना शुरू हो गए, और उमर अतान जो है वो बाद में आए, उन्होंने देखा ये दोनों हजरात नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक ने दोनों बैठे रो रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है, मुझे भी बताएं, मैं भी रोना चाहता हूँ आपके साथ बैठ करके। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर असल में तुम्हारा जो फैसला था ना इन लोगों को कत्ल करवा देने का, अल्लाह ताला को वो फैसला ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये आयत नाजिल फरमाई है, लौला किताबुम मिन अल्लाह सबका, अगर हमने पहले से जो है ना अपने तकदीर के अंदर ये बात ना लिख दी होती, लोहे महफूज के अंदर ये ना बात लिख दी होती कि जी आपकी जो है ना वो सारी गलतियां माफ हैं, तो लमस्सकुम फीमा अखज़तुम अज़ाबुन अज़ीम, तो आपको जो है ना एक बड़ा अजाब आकर के पकड़ लेता इस फैसले के ऊपर। ठीक है, कि आपने इन लोगों को छोड़ने का फैसला क्यों किया, माफी करने का फैसला क्यों किया। ठीक है, तो इन दोनों की सोच जो है वो एक ही थी, अबू बकर सिद्दीक की भी और नबी अलैहिस्सलाम की भी सोच। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद एक बड़ा वाकया अब पता शुरू होता है, तो अब जो है ना एक बड़ा वाकया जो था इसके बाद, एक तो बदर का वाकया, नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक की सोच की यक्स यानी या गाने गाए या सिमिलैरिटी आप सोचने की सोच। इसके बाद एक बड़ा वाकया जो आता है वो कौन बताएगा? आप लोगों के साथ अपने मौके पर वो डिस्कस हो चुका है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक की एक ही सोच नजर आती है। ऑनलाइन किसी को याद है? एक ही सोच नजर आने का दूसरा बड़ा वाकया। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे वाकया, लेकिन बड़ा वाकया एनीवन, जिसमें जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा था वैसे ही अबू बकर सिद्दीक ने सोचा था। ये बड़ा वाकया जो था ये हुदैबिया का वाकया, ठीक है, हुदैबिया का। जब नबी अलैहिस्सलाम उमरा करने के लिए सहाबा कराम के साथ निकले थे और इनको जो है वो मुसलमानों को नबी अलैहि वो कुफार मक्का ने जो है ना वो रास्ते में रोक दिया था कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि आप इतना मजे से आकर के यहाँ पे मक्का मुकरमा में आ जाएं और जो है ना वो आप उमरा कर लें और हम देखते रह जाएं, हालांकि आपके साथ तो हमारी लड़ाई है, हम बदर में भी लड़ चुके हैं, हम जो है वो ओहद में भी लड़ चुके हैं और हम दुश्मन हैं और ये क्या आप आराम से। तो उन्होंने जो है वो रास्ता रोक दिया। कुछ कहना चाहिए?
जवाब
हाँ बस बताएं।
दे दे
हाँ ठीक है, तो वो जो मामला हुआ था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उस वक्त बात समझ में नहीं आई थी, ठीक है, तो वो कॉन्वर्सेशन बकायदा जी ने किताब के अंदर नकल भी फरमाई है कि जब सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा गया ना, तो उस मौके पर जो कुरैश का एम्बेसडर आया हुआ था सफीर सुहेल बिन अमर, ठीक तो उन्होंने बड़ी सख्त बातें करी थी नबी अलैहिस्सलाम की शान में, गुस्ताखी की बातें उस वक्त करी थी, तो लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी सारी की सारी शर्तें मान ली और बड़ी सख्त शर्तें थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे नबी अलैहिस्सलाम झुक के सुलह कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई अगर कोई हमारा बंदा मुसलमान होकर के मदीना मुनव्वरा आ जाएगा तो हम उसको वापस कर देंगे, लेकिन अगर कोई मदीना मुनव्वरा से काफिर होकर के मक्का मुकरमा चला जाएगा तो वो उसको वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह की बहुत ही ऐसी शर्तें थी जिसके ऊपर ना हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो तो आपको पता है माशाल्लाह जलाली, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये कैसे यार, ये तो है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से बाकायदा पूछना शुरू कर दिया, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि क्या आप अल्लाह के नबी बरहक नहीं है, क्या आप सच्चे नबी हैं, नबी नहीं है? तो उमर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, वाकई अल्लाह ताला का नबी हूँ। फिर फरमाया कि क्या हम हक पर और हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ यकीनन हम ही हक पर हैं और हमारे दुश्मन बातिल पर हैं। तो उमर ने फरमाया फिर हम ऐसी जिल्लत क्यों गवारा कर रहे हैं, ऐसी झुक करके सुलह करना, ऐसी उनकी शर्तें सारी की सारी मान लेना, हम क्यों उसको बर्दाश्त कर रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाशुबा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता और वो मेरा नासिर और मददगार है। भाई मैं जो करता हूँ वो मा यंतिकु अनिल हवा, मैं अपनी ख्वाहिश से तो ये काम नहीं कर रहा ना, मैं तो अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह ने मुझे ये गाइड किया है जिस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। अभी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मैं झुक के सुलह कर रहा हूँ लेकिन अल्लाह की मदद जो है वो मेरे साथ ही है, तुम फिक्र ना करो उसकी, ठीक है। तो उमर ने फरमाया कि क्या आपने ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्ला जाएंगे उमरा करेंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि हम लोग उमरा कर रहे हैं, इस ख्वाब की वजह से ही तो ये सफर शुरू किया था ना, और सबको पता था कि आप ने ख्वाब देखा है और ख्वाब की वजह से ये सफर किया है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या हम आपने नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्ला जाएंगे? तो नबी अलैहि सल्लम फरमाया कि हाँ, लेकिन क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि हम इसी साल उमरा करेंगे? ये तो नहीं मैंने तुम्हें कहा था, टाइम की तो कोई कैद नहीं लगाई थी कि इस साल करना है कि अगले साल करना है या जो है वो हम चंद महीने के बाद करना है, ठीक है, उम्रा तो साल में एक तो नहीं होता ना, उम्रा तो आप किसी भी जाके कर सकते हैं, तो हमने चंद महीने के बाद उम्रा करना है अभी करना है ये सब तो नहीं कहा था। तो नबी अलैहिस्सलाम तो आपसे ने जो फरमाया ना, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ ये तो आपने नहीं फरमाया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस तुम बैतुल्ला जाओगे और उसका तवाफ भी करोगे, यानी मेरा ख्वाब जो है ना नबी का ख्वाब है, ये ख्वाब झूठा नहीं होता, तो होगा ऐसा लेकिन अभी नहीं हो रहा, इसकी फिक्र ना करो बाद में कभी हो जाएगा। अच्छा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सारे जवाब सुन तो लिए, लेकिन उनका जो है ना वो अभी भी जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, उनका जो एक जहन में था कि भाई ये क्यों हो रहा है, बात क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये तो सबको पता होगा इंशाल्लाह कि अब उन्होंने क्या किया। अबू बकर सिद्दीक के पास का है, ठीक है ना। अच्छा, अरबी जुबान के अंदर एक मकूला है, एक सेइंग है, ठीक है, कि कुछ चीजें जो है ना वो सीधी तरीके से समझ में नहीं आती, ठीक है, जब तक आप उनको उल्टी तरीके से समझने की कोशिश ना करें। ये हमारी लैंग्वेज में उल्टी तरीके होती है, ठीक है। तो लेकिन मकसद ये होता है कि अल अशियाउ तारिफु बि अज़दादिहा, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चीजें अपने अज़दाद से समझ में आती हैं, यानी आप उनकी जब जिद को देखें ना, उनकी जो ऑपोजिट पॉसिबिलिटी थी या उनका जो ऑपोजिट चीज है, जिद है, जिद का मतलब एक ये भी होता है ऑपोजिट होने, उसको जब देखें ना तब आपको बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है ना उमर रतान जो है वो अबू बकर सिद्दीक के पास चले गए, हाँ भी ठीक है चले गए, लेकिन ये मसला इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि बस अबू बकर सिद्दीक के पास चले गए, मसला दूर हो गया, मसला हल हो गया। इसके ऊपर सवाल ये होना चाहिए था कि हमें इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी जो है ना सही तरह से हम इसको अप्रिशिएट कर सकें कि वो अबू बकर सिद्दीक के पास गए, क्योंकि ये इतना अहम क्यों है। वो अहम इसलिए है कि अल्लाह के नबी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई आम शख्स तो नहीं है, ये कोई आम अमीर जमात तो नहीं है, ये कोई आम जो है वो इंसान तो नहीं है कि भाई आप उनसे अगर इख्तलाफ करें या अगर आपको उनकी बात के ऊपर डाउट हो जाए तो कुछ नहीं, डजेंट मैटर, कुछ नहीं होता भाई, इंसान है, इंसान से जो है वो गलती हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आम इंसान तो नहीं है ना, ठीक है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जब इकरार भी कर रहे हैं कि आप ही अल्लाह के नबी हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उमर फारूक अतान ये सारे इकरार कर चुके थे। उमर फारूक अतान जो है नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मान चुके थे, अब क्यों डाउट आ रहा है उनके जहन, अब क्यों डाउट आ रहा है उनके जहन? ये कोई मामूली मसला तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मसला है भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला है, क्यों आ रहा है उनके डाउट, उनके जहन में ये डाउट, ठीक है। तो इस डाउट को जो है ना रिजॉल्व करना इंतहाई जरूरी है, इसको रिमूव करना इंतहाई जरूरी है, जो कि हमारे जहन में तो कोई डाउट नहीं आ रहा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ना, लेकिन हमारे जहन में उमर रज़ियल्लाहु के बारे में डाउट आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो सोच रहे हैं उनके तो आ रहा है, जो नहीं सोच रहे उनको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है तो उसके जहन में उमर रतान के बारे में डाउट आएगा। अच्छा, डाउट आएगा, हम फिर अपने खाने पीने में लग जाएंगे उसके बाद, ठीक है ना, और फिर हम उसको भूल जाएंगे, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता डाउट आए ना आए। लेकिन कल को जब शैतान को मौका मिलेगा, ठीक है ना, तो वो आकर के वो जो डाउट हमारे जहन में आया था ना इस बात को सुन करके, वो फिर इस डाउट को जो है ना फिर बड़ा करने की कोशिश करेगा, उमर रज़ातान के बारे में इस डाउट को वो बड़ा करने की कोशिश करेगा, और हमारे दिल में फिर उमर रज़ातान के बारे में बदगुमानी पैदा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस तरीके से फिर हमारा ईमान जो है ना वो खराब हो जाएगा, उसको हमारा ईमान खराब करना है, तो वो इस डाउट को प्ले करेगा, बड़ा करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ना इस डाउट को क्लियर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो वो डाउट फिर अब कैसे क्लियर होगा? जी
इस तरह के जुम्मनदार को इस दौरान जिस जो तकतीब बनी थी उनकी वहाँ से अमरी अमन राजस्थान में 5 महीने के लिए आए, वो तो यहाँ पहुँच के भी उनका पूरा इरादा था हमले का, तो उनकी तबीयत भी थोड़ा जोश आया था, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक से इस तरह खबर दी कि हम उमरा नहीं करते इंसान, तो उस पर शोक लगा था तमाम सहाबा कराम को, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी उनको सही से हुआ क्या है।
अच्छा,
जो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बात की गई थी कि इंसान को थोड़ा यकीन ज़्यादा हो जाता है अगर वो एक से ज़्यादा बंदों से बात सुन ले रहे, कंफर्मेशन के लिए की बात है।
ठीक है, लेकिन तक कन्विंस नहीं हो सके, ठीक है। देखिए, हम इस डाउट को उमर फारूक रज़ान के बारे में कैसे क्लियर करेंगे? हम वैसे ही क्लियर करेंगे जी। चलिए अंकल, भी अंकल को भी मौका दे देते हैं जी।
हम ये कह सकते हैं कि उनको निर्भर स्वयं की बात पे डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी बड़े की बात समझ नहीं आती तो फिर उनसे एक स्टेप नीचे के पास जाके बात समझनी पड़ती है। ये ताबीज उनकी है इस बात के ऊपर।
उनको अपने ऊपर डाउट था कि मुझे क्यों ये बात जो है वो आप तो सच कह रहे हैं, हक कह रहे हैं, लेकिन अपनी अकल पर उनको डाउट हो रहा था कि क्यों मुझे शर्य सदर नहीं हो रहा।
घुमा फिरा करके तो कुछ ना कुछ बना ही रहता है इंसान अपने ऊपर ही शक था और ये था वो था। ठीक है, वो मोहब्बत की बातें होती हैं इस तरीके से। लेकिन देखें, हम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में डाउट जो है ना, वो उसी तरीके से क्लियर करेंगे जिस तरीके से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने डाउट को क्लियर किया। ठीक है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने डाउट को कैसे क्लियर किया? ठीक है, किसके पास गए? अब्दुल्ला इब्ने उबई अभी तक जिंदा था, है? अब्दुल्ला इब्ने उबई भी था, मुनाफिकीन का सरदार, बड़ा जो है वो भी अकल समझ वाला समझा जाता था, और उसके साथ पूरी टीम भी होती थी ना मुनाफिकीन की, यानी कोई एक मुनाफिक तो थोड़ी था, बहुत सारे मुनाफिक थे। ठीक है ना, वो किसी ऐसे शख्स के पास नहीं गए, हत्ता के वो किसी ऐसे मोमिन के पास भी नहीं गए कि जिस मोमिन का इल्म कम था, जिस मोमिन का इल्म कम था, वो किसी ऐसे मोमिन के पास नहीं गए, बल्कि वो किसके पास गए? वो उसके पास गए अपने डाउट को लेकर के, उसके पास गए जो कि उनसे भी ज्यादा अच्छे थे, जिनकी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम से उनसे भी ज्यादा मजबूत थी। ये जो चॉइस है ना उनकी, ये चॉइस कंफर्म करती है कि ही वॉज रियली वरिड, वो वाकई परेशान थे कि भाई ये क्या, क्यों ऐसे हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस मसले को सॉल्व करूं, लेके नहीं बैठ गए। ये भी तो हो सकता था ना, हमारी तरह, हमारे जहन में कोई डाउट आता है, हम लेके बैठ जाते हैं इसको, फिर हम जो है ना वो खाने पीने में लग जाते हैं, फिर उसके बाद किसी वक्त शैतान आता है और शैतान फिर उस डाउट को एक्सप्लॉइट करता है और वो हमारे खिलाफ, हमें खिलाफ कर देता है, फिर हमारे बदगुमानी पैदा कर देता है। उमर रज़ान चैन से नहीं बैठे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डिड नॉट लेट इट गो। ठीक है ना, ही मेड श्योर कि मेरा ये डाउट क्लियर हो जाए, और कैसे हो, उसके पास गए जो कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ पक्के जुड़े हुए थे। अभी हम सारी क्या बातें कर रहे हैं, निस्बत इत्तेहादी की बातें कर रहे हैं, तो वो निस्बत इत्तेहादी वाले के पास गए। ठीक है ना, देखें एक बात याद रखें कि ये जो हमारे जहन में डाउट्स पैदा होते हैं ना, ठीक है ना, ये डाउट्स जो पैदा होते हैं ना, ये शैतान के वसवसे की वजह से पैदा होते हैं। ये बात आपको पता होगी, शैतान हर एक के साथ लगा हुआ है, वसवसे लगाता रहता है। नबी अलैहिस्सलाम का शैतान मुसलमान हुआ था ना, तो बाकी तो किसी का शैतान मुसलमान नहीं हुआ, वो तो वसवसे करता रहता है, लेकिन वो किसके साथ ज्यादा कामयाब होता है? जिसका इल्म कम होता है। जिसका इल्म ज्यादा होता है ना, तो वो उसको वसवसों में मुबतला नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अले शैतान मिन अल्फ आबिदिन। जो समझ रखने वाला होता है, यानी जिसके पास ज्यादा इल्म और समझ होती है, बगैर इल्म के तो समझ नहीं हो सकती है ना, जिसके पास ज्यादा समझ होती है, वो शैतान के खिलाफ ज्यादा, 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो डाउट्स के जो रीजन होती है ना, वो ये नहीं होती कि हम हमारी नीयत खराब है, हमारी नीयत खराब है, हमारे अंदर इखलास नहीं है, इस वजह से हमारे अंदर डाउट आ गया। नहीं, डाउट की रीजन ये नहीं होती, डाउट की रीजन ये होती है हमारा इल्म कम है, हमारी समझ कम है। ठीक है ना, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इल्म की कमी का तो था उस वक्त, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में उनका इल्म कम था, हमारे मुकाबले में और दूसरे सहाबा के मुकाबले में तो सबसे ज्यादा था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में के मुकाबले में कम था, लेकिन इखलास की कमी नहीं थी उनके अंदर, इखलास की कोई कमी नहीं थी उनके उनके अंदर 100% इखलास था। ठीक है, तो इस वजह से ना उन्होंने एक तो इस डाउट को जाने नहीं दिया, उसको रिजॉल्व करने का फैसला कर लिया, और इसको रिजॉल्व करने के लिए अपने से ज्यादा इल्म वाले के पास गए ताकि उनसे इल्म हासिल कर लें, ताकि डाउट रिमूव हो जाए, बिकॉज डाउट होता कम इल्मी की वजह से, इल्म हासिल हो जाएगा, डाउट रिमूव हो जाएगा, कंफर्म अफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, हमें भी यही करना है कि अगर कभी कोई किसी किस्म का डाउट ईमान के बारे में, सहाबा कराम के बारे में, मशाइख के बारे में आ जाए ना, हमें भी यही करना है कि हमने उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके साथ नहीं जिंदगी गुजारनी, क्योंकि शैतान हर एक के साथ लगा हुआ है, हमारे साथ भी लगा हुआ है, वो फिर हमारे खिलाफ उसको एक्सप्लॉइट करेगा। हमने उसको रिजॉल्व करना है, लेकिन कैसे रिजॉल्व करना है? कम इल्म के पास नहीं जाना है, राइट? जिसकी निस्बत हमसे भी ज्यादा कमजोर है ऊपर वालों के साथ, उसके पास नहीं जाना है, वरना और बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो और हमें खराब कर देंगे और कंफ्यूज कर देंगे। हमें उसके पास जाना है जो हमसे ज्यादा इल्म वाला भी हो और हमसे ज्यादा निस्बत वाला भी हो, और डाउट को हमने छोड़ना नहीं है, बिकॉज शैतान से हमें गाफिल नहीं होना कभी। ये नहीं समझना कि शैतान दूसरों को तो बहकाता है, मुझे को थोड़ी बहका सकता है, नहीं, ही इज टू बिजी विद अदर्स, नॉट मेरे पास के लिए, मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो उमर रतान के बारे में एक आखिरी बात करके हम जो है ना वो आगे बढ़ते हैं, कि उमर रतान के साथ ना इस तरह की मजे मजे की बातें बहुत सारी होती रहती थी, ठीक है। अजीब मामला, हमने कुछ भाइयों के साथ, बड़ों के साथ बैठे हुए थे तो बात हुई कि उमर रतान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों को, हजीब फरमाते हैं ना उमर रतान के पास वो मूसवीयुन निस्बत, ठीक है, वो मशरब जो होता है हर एक के पास है ना, एक उलुल अजम नबी का मशरब, तो उमर रतान जो है ना वो मूसवियुन मशरब नजर आते हैं। तो वो जो कैफियत मूसा अलैहिस्सलाम वाली वाली उमर रतान के अंदर, ठीक है ना, वो भी असा के साथ, वो भी जो है वो जलाली, और ये भी जो है वो जलाली, और तो दोनों के हालात वाकयात पढ़ करके हमें ऐसा लगता है कि ये जो थे ना, ये सबसे ज्यादा महबूब लोग तो नहीं थे। सबसे ज्यादा महबूब तो नबी अलैहिस्सलाम थे, ठीक है ना, उमर रतान तो है वो तो मुहिब थे, वो महबूब थे नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। उसी तरह अबू बकर सिद्दीक रतान नबी अलैहिस्सलाम के महबूब थे, और उमर रतान जो है ना वो आशिक सादिक थे, बहुत थे। लेकिन इन दोनों में एक बात ये नजर आती है कि इखलास में तो 100% थे दोनों के दोनों, पहली बात, और दूसरा ये कि ना ये इतना ज्यादा मोहब्बत करते थे अपने बड़ों से, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से, और उमर रतान जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम से, कि एक होता है ना कि जैसे चहीता बन जाता है कोई इंसान किसी का, चहीता। अब चहीतों की खास, आपने कभी चहीते का लफ्ज इस्तेमाल किया? कभी घरों के अंदर अम्मियां कभी चहीते का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं, कभी अबू भी चहीते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। चहीते लोग जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि वो कभी कभी ना कुछ कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें कर देते हैं, लेकिन बड़े उनसे फिर भी नाराज नहीं होते, बड़े उनसे कभी भी जो है ना वो, यानी कोई मसला नहीं है ना, क्या क्या तुम चुप करके बैठो यार, तुम्हारा कोई मसला नहीं है ना, तुम चुप करके बैठो, कोई चुप, है ना, नाराज नहीं होते हैं वो उनसे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अपने कम इल्मी की वजह से, या अपनी जो है ना वो जरा उनकी तबीयत के अंदर थोड़ी सी बेचैनी है, थोड़ा सा जलाल है, थोड़ा सा जो है ना वो इम्पेशंस है, इस वजह से इन्होंने ये बातें कर दी हैं। लेकिन नीयत इनकी खराब नहीं है ये मोहब्बत वाले सारे के साथ, बिल्कुल मोहब्बत वाले। तो चहीतों के साथ ऐसा मामला होता है कि वो इस किस्म की बातें करते चले जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले उनसे फिर भी राजी, उनसे खुश ही रहते हैं, उनके साथ मोहब्बत ही करते रहते हैं। उमर रतान का भी मामला ऐसे ही लगता है कि वो वैसे तो नहीं बन सके जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रतान बन गए, ठीक है ना, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रतान जो है, उमर रतान ने फरमाया कि ए अबू बकर, आप मुझे उन 3 रातों में से सिर्फ एक रात दे देना और मुझसे मेरी जिंदगी के सारे अमाल ले लें, तो मैं समझूंगा कि मैं बेहतर हुआ। इतना ऊपर थे अबू बकर सिद्दीक रतान, और उमर रतान जो है उस मुकाम तक तो डेफिनेटली नहीं पहुंच सके, लेकिन इश्क में इतने पक्के थे, इतने सच्चे थे, इतने मुखलिस थे कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो उनको हमेशा नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ साथ ही रखा, साथ साथ ही रखा, हत्ता के कब्र के अंदर भी साथ ही लिटा दिया जाकर, ठीक है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इल्म अगर कम भी है, लेकिन हमारे अंदर इखलास की कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला से हमें इस इखलास को मांगना चाहिए। वो आखिर दुआना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाद में हमेशा की तरह आज भी एक्स्ट्रा टाइम ले गया, 7 मिनट आज तो माशाल्लाह। शेख मुआविया साहब जो है वो आपसे खिताब फरमाएंगे, आरू भाई ने अपनी क्लास का वक्त जो है वो इनको दिया, ठीक है, तो आपके हवाले।
आप ऊपर ही बैठे मेरे लिए आसानी।
आप